नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। कैओस मंकीज एंटोनियो गार्सिया मार्टिनेज की 200 में प्रकाशित संस्मरणात्मक व्यावसायिक पुस्तक है। इसमें लेखक वॉल स्ट्रीट के क्वांट काम से लेकर अपनी विज्ञापन तकनीक स्टार्टअप, उसके ट्विटर को अधिग्रहण और आरंभिक प्री आईपीओ फेसबुक में काम करने तक की यात्रा बताता है। यह केवल व्यक्तिगत करियर वृत्तांत नहीं है, बल्कि सिलिकॉन वैली की पूंजी, महत्वाकांक्षा, ऑनलाइन विज्ञापन और आंतरिक सत्ता संघर्षों का तीखा अंदरूनी चित्र है। शीर्षक का कैओस मंकी रूपक उन सॉफ्टवेयर प्रणालियों से आता है जो जानबूझकर अव्यवस्था पैदा कर उनकी मजबूती जांचती हैं। मार्टिनेज इसी रूपक से उद्यमियों को ऐसे व्यवधानकारी तत्वों के रूप में देखता है जो स्थापित व्यवस्थाओं को चुनौती देते हैं। पुस्तक की भाषा व्यंग्यपूर्ण, उग्र और आत्म प्रदर्शक है, इसलिए इसकी अंतर्दृष्टियों को लेखक के निजी पूर्वाग्रहों से अलग करके पढ़ना जरूरी है। फिर भी यह दिखाती है कि उपयोगकर्ता डेटा को विज्ञापन आय में बदलने की प्रक्रिया ने आधुनिक सोशल मीडिया कंपनियों की दिशा और शक्ति को कैसे आकार दिया। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, कैओस मंकी का रूपक नवाचार के साथ अव्यवस्था की कीमत, पुस्तक का केंद्रीय रूपक इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग से लिया गया है। कैओस मंकी ऐसे परीक्षण उपकरण का विचार है जो किसी डिजिटल सेवा में अनपेक्षित विफलता पैदा करके जांचता है कि पूरी प्रणाली उसे सह पाएगी या नहीं। मार्टिनेज इस विचार को उद्यमिता पर लागू करता है। उसके अनुसार स्टार्टअप संस्थापक केवल नए उत्पाद बनाने वाले लोग नहीं है, वे परिवहन, आवास, मनोरंजन, डेटिंग और संचार जैसे क्षेत्रों की पुरानी व्यवस्थाओं को अस्थिर करने वाले कारक भी हैं। यह दृष्टि नवाचार को स्वाभाविक रूप से सकारात्मक मानने से रोकती है। किसी सेवा का सुविधाजनक होना पर्याप्त प्रश्न नहीं है, यह भी देखना होता है कि उसका जोखिम कौन उठाता है, डेटा किसके पास जाता है और लाभ किसे मिलता है। लेखक व्यवधान को रोमांचक और लाभकारी अवसर के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन उसके अनुभव साथ ही बताते हैं कि अस्थिरता कर्मचारियों, छोटे प्रतिस्पर्धियों और उपयोगकर्ताओं के लिए वास्तविक कीमत ला सकती है। इसलिए रूपक का उपयोगी अर्थ यह है कि मजबूत संस्था वह नहीं जो बदलाव को रोक दे, बल्कि वह जो झटकों के बीच जवाबदेही, तकनीकी विश्वसनीयता और मानवीय सीमाएं बनाए रखे। दूसरा, पूंजी, श्रम और संस्थापक के बीच सिलिकॉन वैली का सौदा। मार्टिनेज सिलिकॉन वैली के संबंधों को एक जानबूझकर सरल लेकिन प्रभावी सूत्र में रखता है। निवेशकों के पास समय की तुलना में अधिक धन होता है, कर्मचारियों के पास धन की तुलना में अधिक समय होता है, और उद्यमी इन दोनों के बीच सौदा कराने वाला माध्यम बनता है। यह सूत्र स्टार्टअप की बुनियादी असमानता को समझने में मदद करता है। निवेशक अनेक अनिश्चित दांव लगाने की क्षमता रखते हैं, कर्मचारी वेतन और संभावित इक्विटी के बदले अपना कौशल तथा समय देते हैं, जबकि संस्थापक को पूंजी जुटाने, प्रतिभा आकर्षित करने और भविष्य की एक विश्वसनीय कहानी बेचने का काम करना पड़ता है। पुस्तक यह भी संकेत देती है कि घोषित मूल्यांकन और वास्तविक नकद आधारित मूल्य एक ही चीज नहीं होते। निजी बाजार में कंपनी का ऊंचा मूल्यांकन अक्सर भविष्य की अपेक्षाओं, निवेश शर्तों और तरलता की कमी से निर्मित होता है। पाठक के लिए व्यावहारिक सीख यह है कि स्टार्टअप के अवसर का मूल्यांकन केवल ब्रांड, फंडिंग या कागजी मूल्यांकन से नहीं करना चाहिए। इक्विटी की शर्तें, नियंत्रण, नकद स्थिति, उत्पाद की मांग और निकास की संभावना जैसे प्रश्न उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तीसरा, एडग्रोक से फेसबुक तक, डेटा आधारित विज्ञापन का वास्तविक इंजन। कैओस मंकीज की सबसे उपयोगी परत ऑनलाइन विज्ञापन तकनीक की व्याख्या है। लेखक के अनुभव एडग्रोक, ट्विटर और फेसबुक से जुड़े हैं, इसलिए वह दिखाता है कि सोशल प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं का ध्यान और व्यवहार संबंधी संकेत लेकर विज्ञापनदाताओं के लिए मापने योग्य परिणाम बनाने की कोशिश क्यों करते हैं। फेसबुक के आरंभिक विज्ञापन कारोबार में चुनौती केवल विज्ञापन स्थान बेचने की नहीं थी, चुनौती यह थी कि विशाल उपयोगकर्ता डेटा, लक्षित संदेश, विज्ञापनदाता की मांग और उत्पाद अनुभव के बीच ऐसा संतुलन बनाया जाए जिससे आय बढ़े और सेवा उपयोगी भी बनी रहे। यह ढांचा समझाता है कि मुफ्त दिखने वाली डिजिटल सेवाओं में उपयोगकर्ता अक्सर ग्राहक नहीं बल्कि विज्ञापन के लिए उपलब्ध दर्शक और डेटा स्रोत होते हैं। पुस्तक डिजिटल गोपनीयता को भी इसी व्यावसायिक तर्क के संदर्भ में रखती है। डेटा संग्रह को केवल तकनीकी विशेषता मानना अधूरा है, क्योंकि उसके पीछे लक्ष्यीकरण, मापन और मुद्रीकरण की आर्थिक जरूरत होती है। पाठक के लिए मुख्य बिंदु यह है कि किसी प्लेटफॉर्म की गोपनीयता नीति विज्ञापन उत्पाद और सिफारिश प्रणाली को अलग अलग नहीं, एक ही व्यावसायिक मॉडल के जुड़े हिस्सों के रूप में देखना चाहिए। चौथा, स्टार्टअप जीवन में पिवट, अधिग्रहण और आंतरिक सत्ता संघर्ष। लोकप्रिय संस्थापक कथाएं अक्सर विचार, फंडिंग और सफलता की सीधी यात्रा सुनाती है। मार्टिनेज का विवरण इसके विपरीत स्टार्टअप को लगातार बदलती प्राथमिकताओं, सीमित संसाधनों और व्यक्तिगत टकरावों की जगह के रूप में रखता है। अपनी कंपनी बनाने और उसे ट्विटर को बेचने के अनुभव के माध्यम से पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि अधिग्रहण अंत नहीं होता। उसके बाद उत्पाद की दिशा, टीम की भूमिका, संगठनात्मक राजनीति और खरीदार कंपनी की रणनीति तय करती है कि मूल काम का क्या बचेगा। फेसबुक में लेखक का अनुभव भी बताता है कि बड़ी तकनीकी कंपनियों के भीतर उत्पाद संबंधी असहमति केवल विचारों की बहस नहीं होती, वे राजस्व, नेतृत्व की प्राथमिकताओं, टीमों के प्रभाव और कंपनी के भविष्य के मॉडल पर संघर्ष बन सकती हैं। यह दृष्टि पिवट को किसी जादुई रणनीतिक शब्द के बजाय दबाव में लिया गया निर्णय मानती है। कभी पिवट बाजार से सीखने का संकेत है, लेकिन कभी वह गलत आरंभिक धारणा, कमजोर वितरण या घटती नकद क्षमता का परिणाम होता है। इसीलिए पुस्तक संस्थापकों और कर्मचारियों दोनों को निर्णय प्रक्रिया, अधिकारों और प्रोत्साहनों को समझने की चेतावनी देती है। अंत में इनसाइडर संस्मरण की उपयोगिता और उसके नैतिक सीमित पक्ष, इस पुस्तक की ताकत उसकी प्रत्यक्षता है। लेखक नामचीन कंपनियों के चमकदार सार्वजनिक चेहरे के बजाय उनके भीतर की हड़बड़ी, अहम प्रतिस्पर्धा और आर्थिक गणना पर ध्यान देता है। उसका व्यंग्यपूर्ण अंदाज पढ़ने को तेज और यादगार बनाता है, विशेषकर उन पाठकों के लिए जो तकनीकी उद्योग की भाषा के पीछे चल रही प्रक्रियाओं को समझना चाहते हैं। लेकिन यही शैली इसकी महत्वपूर्ण सीमा भी है। मार्टिनेस खुद को कथा के केंद्र में रखता है और उसकी टिप्पणियां कई बार कटु, व्यापक सामान्यकरणों वाली और महिलाओं के प्रति अपमानजनक मानी गई हैं। इस कारण पुस्तक को निष्पक्ष उद्योग इतिहास या नैतिक मार्गदर्शिका नहीं समझना चाहिए। अधिक उचित तरीका यह है कि इसे एक प्रतिभागी के दृष्टिकोण से लिखा गया पक्षपाती लेकिन सूचना संपन्न दस्तावेज माना जाए। लेखक की निजी शेखी, विवादास्पद भाषा और अतिरंजना की संभावना को ध्यान में रखते हुए भी पाठक इसके संस्थागत अवलोकनों से लाभ ले सकता है। यह अंतर महत्वपूर्ण है। किसी संस्मरण में मौजूद अनुभव उपयोगी हो सकते हैं, जबकि अनुभव की व्याख्या सीमित या अनुचित हो सकती है। आलोचनात्मक पठन इस पुस्तक से सीखने की अनिवार्य शर्त है। निष्कर्ष में, कैओस मंकीज उन पाठकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो स्टार्टअप, विज्ञापन तकनीक, वेंचर कैपिटल, सोशल मीडिया या उत्पाद प्रबंधन की दुनिया को उसके वित्तीय और मानवीय तनावों सहित समझना चाहते हैं। संस्थापकों को इससे फंडिंग, अधिग्रहण और नियंत्रण के प्रश्नों पर अधिक व्यावहारिक दृष्टि मिल सकती है। तकनीकी कंपनियों के कर्मचारियों को यह समझने में मदद मिलती है कि उत्पाद निर्णय अक्सर संगठनात्मक शक्ति, राजस्व लक्ष्य और नेतृत्व की प्रतिस्पर्धी धारणाओं से कैसे प्रभावित होते हैं। सामान्य पाठक के लिए इसका प्रमुख बौद्धिक लाभ ऑनलाइन विज्ञापन के उस मॉडल को देखना है, जिसमें डेटा, ध्यान और मुनाफा एक दूसरे से जुड़े हैं। समान व्यावसायिक पुस्तकों से इसे अलग बनाता है इसका संस्मरणात्मक निकटपन। यह बाहर खड़े विश्लेषक की व्यवस्थित रिपोर्ट नहीं, बल्कि स्टार्टअप संस्थापक और फेसबुक के पूर्व उत्पाद प्रबंधक की भीतर से लिखी हुई तेज धार वाली गवाही है। इसी कारण इसमें तकनीकी उद्योग के कामकाज की जीवंतता है और इसी कारण इसकी सीमाएं भी स्पष्ट हैं। लेखक की भाषा तथा महिलाओं के बारे में उसकी कुछ टिप्पणियों को व्यापक आलोचना मिली है, इसलिए इसे आदर्शों की पुस्तक की तरह नहीं बल्कि एक पक्षधर स्रोत की तरह पढ़ना बेहतर है। यदि पाठक इसके दावों को संदर्भ, पूर्वाग्रह और सत्यापन की जरूरत के साथ परखे तो यह सिलिकॉन वैली की चमक के पीछे मौजूद जोखिम, सौदेबाजी और डेटा आधारित सत्ता को समझने वाली विशिष्ट पुस्तक सिद्ध होती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं एंटोनियो गार्सिया मार्टिनेस, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।